राम जय राम जय श्री राम जय राम जय जय राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमरान्धस्य ज्ञानार्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आदिगुरवे नमः जुगादिगुरवे नमः सद्गुरवे नमः श्रीगुरुदेवे नमः। ॐ सहना सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो सर्वोपलवरहिता प्रज्ञानघना प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सच्चिदानन्द भगवान् की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्री स्वामी जी महाराज की जय। कण कण में विराजमान घट घट में व्याप्त सर्वंत्र जामी प्रभु पिता परमात्मा के चरणों का ध्यान करते हुए अनंत श्री विभूषित ब्रह्मलीन वेदांत केसरी सर्वकाल वंदे श्री स्वामी जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। अनंत श्री विभूषित परमवीत राग श्री श्री महंत साहिब जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। इस परम पावन स्थली में तत्व जिज्ञासा की पूर्ति के पिपासु रूप में उपस्थित सभी श्रोतागण सबको सबका अभिनंदन। हम लोगों का अब भाग्य है कि जो महाराज जी की पावन पवित्र पावन स्थली में बैठ करके हम लोग उनके चरणों का ध्यान करते हुए वेदांत की चर्चा वेदांत का चिंतन करते हैं। हमारी चर्चा चल रही है उपनिषद के ऊपर, जो हमारे अंतःकरण में अज्ञान रूपी पर्दा है उस अज्ञान की निवृत्ति, उसका एक ही अविद्या और अज्ञान जिसको बोलते हैं उसका एक ही उपाय है ज्ञान के द्वारा उसकी निवृत्ति हो सकती है। और इति ज्ञानान मुक्ति ही, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं मिल सकती। निष्काम कर्म और उपासना मुक्ति में सहायक हैं, क्योंकि अंतःकरण में जो मल दोष है उसकी निवृत्ति निष्काम कर्म से हो सकती है। जो हमारे अंतःकरण में विक्षेप है चंचलता है जो हमारा मन डुलायमान होता है, बार बार चंचल होता है, उसकी चंचलता की निवृत्ति उपासना से हो सकती है। वह भी निष्काम हो तो, यदि काम कर्म करते रहेंगे, उपासना करते रहेंगे, तो फिर जन्म मरण का चक्र समाप्त नहीं होगा, क्योंकि जो भी कोई हम कर्म करते हैं उसका फल अवश्य भोगना पड़ता है। जब कर्म करेंगे तो फल भोगेंगे, फिर आएंगे फिर जाएंगे, तो ये जो चक्र है, जो श्रृंखला है आने जाने की, उसकी निवृत्ति ज्ञान से ही हो सकती है। और ज्ञान कर्म और उपासना के बाद में मिलता है। ज्ञान की प्राप्ति साधन तुष्टते संपन्न जो अधिकारी है उसी को होती है। तो हम चर्चा कर रहे थे ज्ञान के लिए, ज्ञान के द्वारा जो मुक्ति की प्राप्ति है, निज स्वरूप की आत्मक अवस्था की प्राप्ति है, आत्मक अवस्था में हम कैसे स्थित होंगे, स्वरूप में कैसे स्थित होंगे, उसी की चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि जो हमारी जीवन यात्रा है, उस जीवन यात्रा में कई पड़ाव हैं रास्ते में, बहुत लंबी यात्रा है जीवन यात्रा। उस यात्रा में कहाँ कहाँ हम ठहरते हैं, किस किस प्रकार हमारे को रुकावट पड़ती है, उसी को ही जानना है। यात्रा की सफलता तब होती है हमारे को रास्ता मालूम हो, रास्ते में यदि हमारे को पड़ाव करना हो उसके लिए मालूम हो, रास्ते के प्रतिबंध कहाँ कहाँ रुकावट पड़ेगी ये सब मालूम हो, तो फिर यात्रा मंगलमय होती है। तो जीवन यात्रा है, उसमें कहाँ कहाँ हमारे को पड़ाव में ठहर करके आगे मंजिल तक पहुँचना है। जीवन यात्रा एक शरीर की यात्रा है और दूसरी मन की, भाव स्थूल शरीर की, फिर सूक्ष्म शरीर की, फिर कारण शरीर है। तो बाहर लौकिक जो यात्रा है हमारी, इस स्थूल शरीर के द्वारा होने वाली जो यात्रा है, उसकी मंजिल कहाँ है? उसकी मंजिल तो शमशान तक है, वहाँ जाकर के उसकी समाप्ति हो जाती है, स्थूल शरीर की यात्रा। लेकिन जो सूक्ष्म शरीर है उसकी यात्रा की समाप्ति शमशान में जाकर के नहीं होती, उसकी तो समाप्ति तभी होगी जब हम अपने स्वरूप में स्थित होंगे। उसका ज्ञान से जब चेतन होगा तब उसकी जीवन यात्रा की समाप्ति होगी। बाहर वाली यात्रा तो हम सबको मालूम है, लेकिन जो सूक्ष्म शरीर की यात्रा है उसी के लिए ये सब है कि उसका सूक्ष्म और कारण शरीर की समाप्ति तभी होती है जब हमारे को अपने स्वरूप की स्थिति प्राप्त होती है। तो बाहर का विचार भी करना चाहिए, और बाहर के साथ साथ जब बाहर की यात्रा समझ में आ जाएगी, जब हमारे को पता चल गया कि इसकी मंजिल है शमशान, वहाँ जाकर इसको समाप्त हो जाना है, तो फिर हम क्यों इसका विचार नहीं करते? हम ही अपने आप को यही मानते हैं कि शरीर का मरना ही हमारा मरना है। तो फिर इसका मतलब हमारे को अपनी मंजिल के बारे में मालूम नहीं है, हम गलत रास्ता चुन लिया है। इसलिए मानो एक गाड़ी होती है, जो गाड़ी है उसका काम है आपको मंजिल तक पहुंचाना। लेकिन यदि कोई गाड़ी को ही मंजिल मान ले तब वो मंजिल में नहीं पहुंच पाएगा। साधन, यानी साधन को कोई कहे कि ये मेरा साध्य है, मेरा लक्ष्य है, तो नहीं पहुंच सकेगा। भाव जब ही हमारे को मंजिल के ऊपर पहुंचना है तो साधन को छोड़ना पड़ेगा। गाड़ी से उतरेंगे तभी हम अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचेंगे। तो जब जीवन यात्रा चल रही है तो इसमें हम असवार किस पे हो रहे हैं? कल भी हमने विचार किया था कि किस में हम रहते हैं, किस में असवार हैं। आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव तू, ऐसा कहा है वेद भगवान ने। कि आत्मा जो साक्षी है वो रथी है, और किस रथ के ऊपर असवार है, जो रथी होता है, रथी भाव जो बैठने वाला जो मालक है वो किसी रथ के ऊपर बैठेगा, तो आत्मा भी रथी है, तो उसका रथ कौन सा है? शरीरम रथमेव तु, ये है शरीर रूपी रथ। रथ यानी गाड़ी, पहले रथ चलते थे, आजकल गाड़ी चलती है। तो कहते हैं कि ये आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव तु और बुद्धिम तु सारथिम गेय। रथ को चलाने वाला एक सारथी होता है, ड्राइवर। तो हमारे इस शरीर रूपी रथ का ड्राइवर कौन है? बुद्धि। मन परब्रह्मेव तु, जो मन है वो लगाम है। जब रथ का अलंकार देते हैं तो उसी के सब अंग बताते हैं। ये रथ में घोड़े होते हैं, घोड़ों को लगाम होती है, उसके चक्र पहिए होते हैं, कि सारथी होता चलाने वाला। तो शरीर रूपी रथ है, आत्मा रथी है, बुद्धि सारथी है, मन रूपी लगाम है, और जो हमारे इंद्रे हैं वो क्या है? घोड़े। रथ को कौन से घोड़े हैं? इंद्रे रूपी घोड़े। और फिर उस रथ को जाने का मार्ग कौन सा है? जो विषय हैं यही मार्ग है, यही रास्ते हैं उसके जाने के। उस रथ को इंद्रिय रूपी घोड़े जोड़े हुए हैं, और कहाँ ले जाते हैं? किस मार्ग पर ले जाते हैं? विषय रूपी मार्ग पर ले जाते हैं। तो जिसका बुद्धि रूपी सारथी उसके वश में होगा, ड्राइवर के ऊपर जिसका अंकुश होगा मालिक का, वो ड्राइवर जो सारथी है वो घोड़े की लगाम को अपने वश में रखेगा, और जहाँ कहेगा उधर को लेके जाएगा। तो यदि ड्राइवर ढीला हो, ड्राइवर इसलिए ढीला होगा कि उसके पीछे अंकुश नहीं होगा मालिक का, वो ढीला हो जाएगा तो घोड़े अपनी मर्जी करेंगे, तो जहाँ उनकी इच्छा होगी वहाँ आपको जाकर के घेर देंगे। इस प्रकार से हमने जीवन यात्रा को समझना है कि हमारी जीवन यात्रा है तो हमारे पास रथ कौन सा है, घोड़े कौन से हैं, उनके जाने का मार्ग कौन सा है, रोड कौन सा है, लगाम है, ये विचार हमारे को करनी है। तो अब हम चिंतन ये करना है कि हम सारथी हैं, यात्रा में हम मालिक हैं, ना तो हम रथ हैं और ना हम घोड़े हैं, ना हम सारथी हैं, ना हम मार्ग हैं। ऐसा विचार करेंगे तो हमारी यात्रा मंगलमय। आप कहते हैं ना कि आपकी यात्रा मंगलमय हो, तो मंगलमय कब होगी? जब रास्ते में कोई विघ्न नहीं पड़ेगा। जब विघ्न पड़ेगा तो मंगलमय नहीं होगी, कष्टदायक हो जाएगी। तो यात्रा तो हमारी भी चल रही है, कहते हम ही हैं कि हमारी को ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि हमारी यात्रा मंगलमय हो। तो ये जीवन रूपी यात्रा जो है कैसे मंगलमय होगी? भाव रास्ते की रुकावटें दूर करनी पड़ेगी। तो बतलाया हमने आपको कि रास्ते की रुकावट कौन कौन सी है। हमारा मार्ग प्रशस्त होना चाहिए, मार्ग में कोई अवरुद्ध करने वाली प्रतिबंध कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए, और जो घोड़े हैं वो सारथी के काबू में हो, और सारथी किसके काबू में हो? हमारे काबू में हो। तो हमने विचार किया होता है, जब हम महात्माओं के पास जाते हैं तब इस बात का पता चलता है। इसको जब विचार करेंगे, चिंतन करेंगे, तो हमारे को केवल रथी बनना है, साक्षी बनना है, ना हमारे को सारथी से कोई मतलब है, ना घोड़ों से कोई मतलब है, ना मार्ग से, ना रथ से, वो केवल हमारे साधन है सब। तो हमारे को भ्रांति क्या हो गई? हम अपने आप को सारथी, हम अपने आप को रथी तो माना ही नहीं, हमने अपने आप को रथ मान लिया। पहले हमने जहाँ से शुरू किया था ना, कि गाड़ी का मतलब है हमारे को हमारे गंतव्य स्थान पर पहुँचाना, तो यदि कोई अपने आप को गाड़ी मान ले वो कैसे पहुंचेगा? तो हमारी हालत क्या हो गई है, हमने अपने आप को रथ मान लिया है। रथ यानी शरीर, हम शरीर तो मानते हैं अपने आप को, तो जब शरीर मानते हैं तो हमारे को जो हमारी जो निज स्वरूप है, हमारा जो आत्मिक स्वरूप रूपी हमारा स्थान है पहुंचने का, वहां कैसे पहुंचेंगे? इसलिए हम इस पहले सबसे हमारा प्रथम कर्तव्य है कि हमारी जो रथ बुद्धि है वो समाप्त हो जाए। हम रथ नहीं हैं, हम रथी हैं, हम शरीर नहीं है। शरीर रूपी गाड़ी है ना हमारे पास, हम गाड़ी नहीं हैं, गाड़ी के मालिक हैं। लेकिन भ्रांति होगी कि नहीं हम गाड़ी हैं, रथ हैं। रथ हैं ये कैसे हमारे को भ्रम दूर होगा? हमने समझा है हम रथ हैं, पहले तो ये हमारे मन में आना चाहिए कि रथ हैं हम, ऐसा हमने समझा कैसे? जब कोई हमारे को शंका होती है तभी उसका समाधान हो सकता है। संसार में शंकाएं बहुत हैं और उनकी जितनी शंकाएं उनका हल भी है, ऐसा कुछ नहीं है कोई भी शंका ऐसी नहीं जिसका हल ना हो। हमारे को शंका ही नहीं, मतलब शंका हमने चिंतन करेंगे तो पता चलेगा कि गलत है हमारा ये सोचना, गलत है, शंका हो जाएगी ना। अभी तक ये प्रश्न ही नहीं उठता कि मैं शरीर हूँ, कहाँ उठता है प्रश्न? शरीर हूँ ये तब प्रश्न उठेगा जब हम शरीर को यथार्थ रूप से जानेंगे, जब हम रथ को पहचानते होंगे, गाड़ी को पहचानते होंगे कि इसमें कौन कौन से पुर्जे हैं, गाड़ी किसको कहते हैं, तभी पहचानेंगे ना भी इसको गाड़ी कहते हैं, इसमें क्या क्या पुर्जे लगे हैं। तो शरीर किसका नाम है ये मालूम हो, शरीर में क्या क्या है मतलब सामग्री। ये स्थूल शरीर आप जानते ही हैं, पांच तत्वों का जो बना हुआ जो ढांचा है सामने हमारे, ये है। इसमें पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश है, वो उसके पांच सूक्ष्म भूतों के द्वारा जो विस्तार हुआ, पंचीकरण जिसको बोलते हैं, उनका बना हुआ जो शरीर है। बाहर वाला 25 तत्व का शरीर है बाहर वाला। तो हम इसमें चिंतन करेंगे जब कि ये शरीर को हमने मान लिया कि ऐसा है, पहचान हो गई हमारे को, तो जब शरीर में आकाश, वायु, तेज, जल है, अग्नि है, तो इसमें से हम कौन से हैं? हम वायु हैं, आकाश मल तेज हैं, जल हैं, मानते हैं ना हम। जब इस शरीर में कुछ गड़बड़ होता है कि मानो इस शरीर का जो धर्म है वो क्या क्या है, इसमें नाम है और रूप है इस शरीर में, और इसमें क्या होता है जब नाम और रूप में हम क्यों असक्त होते हैं, क्यों हमने समझा ही नहीं है कि हम शरीर नहीं हैं, यानी हम गाड़ी नहीं हैं, हम गाड़ी के मालिक हैं, शरीर नहीं है, शरीर को जानने वाले हैं। तो जब शरीर में कोई गड़बड़ होता है तो हम कहते हैं कि मैं पतला हो गया, मैं मोटा हो गया। मानो गाड़ी में कोई गड़बड़ हुआ, गाड़ी एक्सीडेंट हो गई, तो क्या कहेंगे भी मैं एक्सीडेंट हो गया? नहीं, कभी भी नहीं कहते मेरा, मेरी गाड़ी का कहते एक्सीडेंट हुआ, मैं ठीक हूँ कहते हैं ना। तो शरीर के जब कोई चोट लगी, कोई बात हुई, तो किसका एक्सीडेंट हुआ? शरीर का। तो फिर हम क्या कहते हैं? फिर ऐसा नहीं कभी सोचते ना, ऐसा कहना चाहिए कि नहीं मैं ठीक हूँ, शरीर में गड़बड़ है। हम कहते नहीं मैं ठीक नहीं, ऐसा ही कहते हैं ना भी मैं आज ठीक नहीं हूँ। जब वहाँ हम समझ जाते हैं कि एक्सीडेंट गाड़ी का हुआ है, मैं सही हूँ। आपसे कोई फोन से पूछता तो आप कहते हैं मैं सही सलामत, तो कहते हैं गाड़ी और मिल जाएगी, कोई बात नहीं, ठीक भी हो जाएगी। तो शरीर में जब गड़बड़ है तो आपसे कोई पूछता है तो आप कहते हैं नहीं मैं ठीक नहीं हूँ। ये जो चिंतक लोग हैं उनसे आप पूछिए, महात्मा से, वो कहते हैं मैं ठीक हूँ, शरीर में कुछ गड़बड़ है। उनका यही चिंतन का अंतर है ना। तो जब हम जान लेंगे कि हम शरीर का कोई भी पार्ट हम नहीं है, ना हम वायु हैं, ना तेज हैं, ना आकाश हैं, हम तो कुछ भी नहीं, हम तो इनके जानने वाले
दृष्टा हैं, साक्षी हैं, तो फिर कभी भी नहीं कहेंगे शरीर में कुछ भी हो जाए तो हमारे को अंतर नहीं पड़ेगा ना। शरीर का कष्ट जो है शरीर में रहेगा ना, शरीर का कुछ अंग ढीला हुआ, कुछ उसमें गड़बड़ हुआ, तो हम उसको देखते रहेंगे ना, साक्षी हैं, ये पता चलता रहेगा हमारे को कि आज ठीक होगा, कल को ठीक हो जाएगा, इसके हम साक्षी हैं। तो हमारे होते ही उसको गड़बड़ हुआ, हमारे देखते हुए ठीक हुआ, हम दोनों के साक्षी हैं। लेकिन हम कहते हैं कि मैं ठीक नहीं हूँ, फिर कोई पूछता तो कहते हैं आज मैं ठीक हूँ, इसका मतलब फिर हमने अपने आप को क्या माना, शरीर माना, मालिक नहीं माना, गाड़ी माना। तो कैसे हमारी यात्रा की मंजिल हमारे को प्राप्त होगी, गाड़ी से अलग मानना पड़ेगा, तो तब हम गाड़ी से उतर करके पहुँचेंगे ना। तो हमने इसको शरीर मान लिया, तो शरीर से अलग होकर के अपने स्वरूप में स्थित कैसे होंगे, ये चिंतन करना चाहिए। शरीर में जो कुछ आता है वो शरीर का धर्म है, और सबसे बड़ा धर्म इस शरीर का कौन सा है, सबसे बड़ा कष्ट कौन सा है इस शरीर के साथ, आसक्ति होने से, नाम और रूप में आसक्ति होने से सबसे बड़ा कष्ट कौन सा है, जन्म और मरण सबसे बड़ा कष्ट है कि नहीं। इस नाम रूप के साथ आसक्ति होने से सबसे बड़ा कष्ट है जन्म और मरण का। तो इसका चिंतन कीजिए कि जो हमारे पास गाड़ी है वो गाड़ी जब नष्ट हो जाती है, मानो इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ कि गाड़ी बची नहीं, तो कौन नुकसान गाड़ी का हुआ, हमारा तो नहीं हुआ, हम तो फिर भी अलग हैं गाड़ी से। तो जब ये शरीर जब हमारी यात्रा चल रही है, यात्रा में से मानो शरीर का एक्सीडेंट हुआ, तो क्या हुआ, शरीर समाप्त हो गया, जैसे गाड़ी समाप्त होगी शरीर समाप्त हो गया। हम तो सही है ना, लेकिन हम मानते हैं कि हम कहते हैं वो तो चला गया, फलाना आदमी चला गया, कहाँ गया वो, शरीर गया है ना, लेकिन हमने उसको भी शरीर ही माना था, अपने आप को भी शरीर ही माना था, इसलिए कहते हैं वो चला गया। जहाँ आत्मघाती की बात आनी है ना आगे, उसके लिए बोल रहे हैं, हम मानते हैं कि वो चला गया यानी समाप्त हो गया, समाप्त तो शरीर हुआ है। यदि हमने समझा होता कि शरीर अलग है आत्मा अलग है, तो हम कहते भी उसका शरीर छूट गया, कहते तो हैं पुराने आदमी का शरीर छूट गया, इसका मतलब आदमी तो है, शरीर छूटा है उसका, हम बोलते भी हैं कि पुराने आदमी का जो शरीर छूट गया, इसका मतलब शरीर खत्म हुआ है, आदमी है, गया नहीं है आदमी, बोलो आत्मा रूप में है वो। तो इतना हम बोलते हुए, शब्दों में बोलते हुए भी नहीं समझ पाते, चिंतन नहीं करते कि शरीर छूटता है, शरीर का एक्सीडेंट हुआ तो शरीर चला गया, मैं तो हूँ, तब हम जान पाएंगे। ये जीवन यात्रा हमारी तभी सफल होगी, और जब इस शरीर से मतलब देह ध्यास से छूटेंगे। संक्षेप से चिंतन कर रहे हैं, बहुत गहरा चिंतन है, इसमें कई धर्म है ना इस शरीर के, केवल नाम रूप की बात है भैया, तो नाम रूप से आसक्ति छोड़ दो, नाम और रूप जो सामने आपको दिखाई पड़ता है ये नाम रूप है, शरीर में नाम और रूप को छोड़ना है, जो अस्थि भाति प्रिय तो हम हैं, हमारा कोई नुकसान नहीं होता शरीर के जाने से। दूसरी बात है, जब इतना मालूम हो जाए कि गाड़ी मैं नहीं हूं, तो दूसरी बात कौन सी, ड्राइवर, गाड़ी चलाने वाला, रथ नहीं हूं मैं। जब ये कहता है वेद भगवान, ये जो अलंकार है ये श्रुति में है, ऐसे नहीं बोल रहा, श्रुति में है, उपनिषद में ही है कि आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव तु, आत्मा रथी है शरीर रथ है, और बुद्धिम तु सारथिम गेय, बुद्धि कौन है, सारथी, रथ को चलाने वाला, रथ हम नहीं है, भाव शरीर नहीं है। ये चिंतन करेंगे तो देह देहास जो इसका है स्थूल शरीर का, उससे हम छूट जाएंगे बाहर वाले से, सबसे बड़ा तो जे देह ध्यास है, उसके बाद अंदर जाएंगे, जितना कष्ट है संसार में इसी से हो रहा है। जो कुछ हम संसार में कर्म कर रहे हैं किसके लिए करते हैं, इस शरीर के लिए, यह हमारा शरीर अस्वस्थ रहे, बना रहे। ठीक है, अस्वस्थ रहना चाहिए, जब तक गाड़ी हमारे पास है तो गाड़ी सही रहनी चाहिए, अच्छी बात है, उसका ख्याल रखना हमारा फर्ज बनता है। लेकिन गाड़ी तो हम नहीं है, ये तो ड्रामा अपने को निकालना ही पड़ेगा कि गाड़ी जब तक उसकी अवधि है, जब तक उसकी बतलाया जाता है भी इतने साल तक जो चलेगी तो उतने साल तक विश्वास है कि चलेगी, उसके बाद समाप्त तो होनी है ना, अवधि उसकी गारंटी उसकी जितनी है। तो ये शरीर जो है हमारे को प्रारब्ध से मिला है, जब प्रारब्ध रूपी उसकी अवधि समाप्त हो जाएगी तो उसको जाना ही है, तो इसका मतलब इसके साथ हमारा कोई संबंध नहीं है। दूसरा, हम सारथी नहीं है, इसको चलाने वाले सारथी, बुद्धि रूपी सारथी मैं नहीं हूं। बुद्धि एक वृत्ति है, अंतःकरण की एक वृत्ति है, व्यवहार है, कौन सा निश्चय करना, बुद्धि का अर्थ है निश्चय करने वाली अंतःकरण की एक वृत्ति व्यवहार, तो वो डिसाइड करना, निश्चय करना भी ये बात सही है ये बात गलत है, ये काम है वृत्ति का, वृत्ति का काम है, वृत्ति का धर्म है, हमारा नहीं। जब सारथी आपको ड्राइवर कोई कहेगा बोलेगा कि महाराज जी ये रास्ता सही है, वो ड्राइवर कह रहा है ना, ड्राइवर की बात है, हम तो ड्राइवर से अलग हैं कि नहीं, वो हमारे को कह सकता है लेकिन हमारी मर्जी है उसको कहेंगे इधर को चलो, इधर को हम कहते हैं वो सही है। अब बुद्धि हमारे को कोई बात निश्चय करके बताती है तो चिंतन हमने करना है कि बुद्धि जो फैसला दे रही है ये कैसा है, हम मानने योग्य है हमारे कि नहीं। बुद्धि निश्चय कर देती है कि यहाँ जाना आपको सही है तो आप उधर को चल पड़ते हैं, विचार नहीं किया कि ये जिधर हम जा रहे हैं ये बुद्धि ने कहा है, बुद्धि गलत भी कह सकती है। तो जब हम अपने आप को बुद्धि से अलग मानेंगे तभी तो ऐसा निश्चय कर पाएंगे, जब हम सारथी ही मान लेंगे अपने आप को तो चल पड़ेंगे, सारथी हम नहीं हैं, सारथी से अलग हैं। उसके बाद क्या है, उसके हाथ में लगाम है घोड़ों की, लगाम कौन सी है, मन रूपी लगाम है, मनः परग्रह मेवतु, मन रूपी लगाम है किसके हाथ में, बुद्धि रूपी सारथी के हाथ में। तो मन संकल्प विकल्प करता है, किसके अनुसार करता है, लगाम किसके साथ बंधी होती है, घोड़ों के साथ। तो यदि घोड़े प्रबल हों शक्तिशाली हों तो लगाम क्या करेगा, सारथी कमजोर है तो घोड़े लगाम से खींच के ले जाएंगे जिधर उनकी इच्छा होगी। तो घोड़े हैं इंद्रिय रूपी घोड़े, चक्षु हमारे हैं, कान है, रसना है, त्वक है, घ्राण है, वाणी है, ये जितने हमारे इंद्रिय हैं ये घोड़े हैं। इन घोड़ों को क्या चाहिए, इनके विषय चाहिए, रूप को, चक्षु को रूप चाहिए, कान श्रवण को शब्द चाहिए, त्वक को स्पर्श चाहिए, घ्राण को सूंघना होता है। तो ये अपने विषयों की तरफ जाना ही इनका स्वभाव है। ये प्राण पश्यति, प्राण चिखाणी व्यतिरण स्वंभू तस्मान प्राण पश्यति न अंतरात्मन, ये कहती है श्रुति। प्राणची खानी व्यतिरण स्वयंभू, जो स्वयंभू है परमात्मा है उसने प्राणची का मतलब जो हमारी इंद्रिय हैं इनका स्वभाव ऐसे बना दिया, तस्मान प्राण पश्यति न अंतरात्मन, ये बाहर को दौड़ती है अंतर को नहीं दौड़ती। ये भी श्रुति कहती है कि हमारे इंद्रियों का स्वभाव कैसा है, वो ब्रह्मा ने विधाता ने ऐसा बना दिया कि हद कर दिया उनको, बाहर को जाती है अंतर को नहीं जाती। उनका स्वभाव जब ऐसा है ये हमारे को मालूम है, तो जो हमारे इंद्रिय रूपी घोड़े हैं उनका स्वभाव है कि वो अपने विषयों की तरफ दौड़ते हैं। तो जब इंद्रिय रूपी घोड़े हैं विषय रूपी मार्ग है, तो हमारे को मार्ग जैसा मिलेगा वैसा ही हम जाएंगे ना। जब हमारा जब सारथी के ऊपर कंट्रोल नहीं है तो सारथी जिधर को घोड़े लेके जाएंगे उधर को जाएगा, हम भी उधर ही गिरेंगे। इसलिए चिंतन ये करना है कि ना तो हम विषय हैं, ना हम इंद्रिय हैं, ना हम बुद्धि हैं, हम क्या हैं, साक्षी हैं, दृष्टा हैं, इनके स्वामी हैं, स्वामी हैं इनके हम। तो स्वामी का कंट्रोल होता है नौकर के ऊपर, सेवक के ऊपर। जिस स्वामी का सेवक के ऊपर कंट्रोल नहीं होता उसको कुछ भी नुकसान हो सकता है, ये हम जानते हैं व्यवहार में। तो इसलिए जीवन यात्रा जब हमारी चल रही है तो जीवन यात्रा के सभी जो हमारे पहलू जो अंग हैं उसके, उनके ऊपर चिंतन करो कि यात्रा में हमारे पास कौन सी गाड़ी है, कौन सा ड्राइवर है, कौन सा हमारा मार्ग है। ये जब चिंतन करेंगे तो यात्रा अवश्य मंगलमय होगी। तो ये भगवान, वेद भगवान ने हमारे को बता दिया कि आप जीवन यात्रा में चल रहे हो। यदि आपको मालूम नहीं तो हम बता देते हैं कि आपके पास कौन से घोड़े हैं, आपके पास कौन सा मार्ग है, आपके पास कौन सा रथ है। स्वयं देखो हमारे को बतला रहे हैं, इतना बताने पर भी हम नहीं समझ पाएंगे। तो अपने आप को साक्षी जब मानना है, ये महापुरुष कहते हैं, तो साक्षी की पहचान, साक्षी किसको कहते हैं, अलग जो रहता है स्वामी है, मालिक है, जो सबको जानता है उसको साक्षी बोलते हैं। तो ऐसे जीवन यात्रा में जब हम जाएंगे तो हमारे कोई भी यात्रा में कष्ट कभी नहीं होगा। देखो आपकी यात्रा कैसे चलती है, कितनी सुंदर होती है, आपको मंजिल दिखाई पड़ेगी, आपको विश्वास हो जाएगा कि अब हम मंजिल में पहुँच जाएंगे, क्योंकि सब हमारे को मालूम है, तो फिर पहुंचेंगे, अवश्य पहुंचेंगे। जब आपका कंट्रोल ही नहीं है गाड़ी चलाने में के ऊपर, गाड़ी के ऊपर, तब आप कहीं भी एक्सीडेंट आपका हो सकता है। यानी जिंदगी में हम कहीं भी गिर सकते हैं, कहीं भी हम गिर जाएंगे, कंट्रोल नहीं ना है। तो तिलकने का, गिरने का जो डर है उससे सावधान रहेंगे तभी नहीं गिरेंगे। सावधानी हमारी इतनी है कि इन सब के ऊपर हम कंट्रोल रखें, अपना कंट्रोल तब रखेंगे जब हम अपने आप को स्वामी जानेंगे। इनके अधीन नहीं होना, इनको अपने अधीन रखना है, यानी इनका ख्याल रखना है कि कौन क्या करता है। तो विषय जो हमारे को खींचते हैं, विषयों के ऊपर चिंतन करें, जब पता चलता है कि रूप का हमारे साथ कोई संबंध नहीं है, हमारा एक घोड़ा है, चक्षु रूपी घोड़ा, उसका कौन सा मार्ग है, रूप, तो रूप का चिंतन करो कि रूप का हमारे साथ तो कोई संबंध ही नहीं है, उसका तो चक्षु के साथ संबंध है। बात तो यहाँ यही चल रही है ना, ईशावास्यमिदं सर्वम, कि नाम और रूप से आसक्ति छोड़ दो। तो रूप का संबंध किसके साथ है, चक्षु के, इसका विषय है वो। तो चक्षु क्या है हमारी जीवन यात्रा में, घोड़ा है, हम तो रथी हैं, मालिक हैं, तो उसको कंट्रोल हम करते हैं, वो हमारी सत्ता से करता है जो कुछ करता है। हम कहते हैं तभी वो देख सकता है रूप को, नहीं तो नहीं देख सकता। मानो कोई घोड़ा जब किसी अपने मार्ग पर जाएगा तो हमारे आदेश अनुसार जाएगा, नहीं तो नहीं जा पाएगा ना, जब हम नहीं बोलेंगे नहीं जाएगा। तो चक्षु यदि अपने जो मार्ग है उसका रूप उस पर जाएगा, उसको देखेगा, तो हमारी अनुमति से जाएगा ना, हमारी सत्ता, अनुमति यानी हमारी सत्ता, उसके देंगे सत्ता तभी वो देखेगा, नहीं तो देख नहीं सकता। ये ही बस चिंतन करने वाली बात है कि रूप चक्षु को देखता है, लेकिन हम समझ लेते हैं कि मैंने देखा, मेरी सत्ता से रूप ने देखा है, मैंने नहीं देखा, मैं तो रूप को, मैं तो चक्षु को देखता हूँ, रूप को मैं नहीं देखता, रूप को चक्षु देखता है, मैं अपने चक्षु का साक्षी हूँ, ये कौन सा रूप देख रहा है ये मेरे को मालूम है, ऐसा चिंतन करना है ना। चक्षु रूप को देख रहा है, हम थोड़ी देख रहे हैं, हम कहते हैं मैंने देखा, मैंने तो ये देखा कि रूप जो इसने देखा, रूप वो कौन सा है, इसने गलत देखा कि सही देखा। ये हमारी ड्यूटी है कि चक्षु जो काम कर रहा है ये सही कर रहा है कि गलत कर रहा है। तो हम सही गलत का निर्णय करने वाले साक्षी हैं ना, हम करने वाले नहीं हैं, हम करने वाले को देखने वाले हैं। तो मालिक देखता है कि सेवक काम सही कर रहा है कि नहीं, यदि वो अपने आप को सेवक ही मान ले तो कैसे होगा। तो ये सब हमारे सेवक हैं। भाव जब चक्षु किसी रूप को देखता है तो आप समझो कि हम चक्षु के साक्षी हैं। ये नहीं कि इसने रूप देखा, मानो इसने रूप देखा, कोई ऐड देखी आपके बाहर लगी हुई, चित्र देखा कोई, तो इसने आपको इसने दिया कहाँ, वो जो अपना चक्षु ने देखा रूप वो किसको दिया, मन को। तो मन ने बुद्धि को सौंप दिया सारथी को, तो सारथी के हम अधीन हैं, जहाँ वो कहता उधर चले जाते हैं। तो साक्षी ने निर्णय किया तो ये सही है, ये फिल्म का चित्र है तो इसमें जाना चाहिए, तो हम उधर कोई चल पड़े। अंधम तमा प्रविशति आगे आएगा, अंध में हम चले जाते हैं, अंधकार में चले जाते हैं, जड़ता में चले जाते हैं, वो हमारा कोई भी उसमें नहीं पार, हमारा उसमें कोई कार्य है नहीं है, वो है चक्षु ने देखा, मन को दिया, मन ने बुद्धि को सौंपा, बुद्धि के पीछे हम चल पड़े, क्योंकि हमारा कंट्रोल नहीं था। यदि हम अपने आप को साक्षी मानते तो चक्षु ने रूप देखा तो हमारे को जब ऐसी बुद्धि के द्वारा हमारे को संकेत हुआ भी तो जाना चाहिए, तो फिर हम साक्षी इस बात के हुए ना कि हम चिंतन करें कि जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। यदि हम साक्षी बना हमारे में होता तो हम देखते, चिंतन करते, बुद्धि कह रही है लेकिन ये वर्जित है, हमारे को आज्ञा नहीं है ऐसा कर्म करने की, कर्तव्य बुद्धि से कर्म करना चाहिए, कुर्वन्ने वेह कर्माणि, यही कर्तव्य बुद्धि है ना, कि चिंतन करके करना चाहिए कि नाम और रूप का त्याग करने के लिए हमारे को बोला है। ये हम चिंतन करेंगे ना कि ईशावास्यमिदं सर्वम, ये नाम और रूप के पीछे हम क्यों दौड़ते हैं, ये चिंतन नहीं किया, ईश्वर बुद्धि से चिंतन करते तो फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। हम स्वयं ईश्वर हैं, उसके साथ हम अभिन्न हैं, अभेद है हमारा। तो ये है चिंतन करने की प्रक्रिया कि जीवन यात्रा को सफल कैसे करना है, तो हम उसके पीछे दौड़ गए। इसी प्रकार सभी जो हमारे इंद्रिय रूपी घोड़े हैं उनके सभी के विषयों में ऐसा चिंतन करना चाहिए। कान कहता है कि ये शब्द बहुत अच्छा है, गाना चल रहा है कहीं अश्लील गाना चल रहा है, तो कान ने वो किसका काम है, शब्द श्रवण का काम है, तो श्रवण का धर्म था उसको दौड़ना, उस उधर को जाना, तो उसके मन में पहुंची बात, मन के द्वारा बुद्धि में आई तो बुद्धि ने निश्चय किया, तो हम उसको सुनने लगे। अब कहते मैं सुनता हूँ बड़ा मजा आता है, चिंतन नहीं किया ना, साक्षी नहीं बने, हम दृष्टा नहीं बने, दृष्टा बनना है उस जीवन यात्रा के, हम दृष्टा हैं। यात्रा तो शरीर की चल रही है, हमारी नहीं चल रही, हम तो दृष्टा हैं, देखने वाले, हमारा कहीं आना जाना नहीं होता, हम तो देखने वाले हैं। शरीर की यात्रा चलती है, शरीर की यात्रा समाप्त हो जाएगी तो हमारे को अंतर नहीं पड़ने वाला। उस दिन भी हमने एक पंक्ति सुनाई थी आपको कि तन छूटे मन कहाँ समाई, पंक्ति सुनाई थी, तो तन छूटे, तो तन जब छूट जाता है तो मन का अर्थ है जो सूक्ष्म शरीर है, जीवात्मा है, वो कहाँ जाती है। यही बात अभी चल रही है ना कि शरीर छूट गया, शरीर मतलब तन छूट गया, तन से तीनों शरीर भी ले सकते हैं, स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, लेकिन यहाँ पर स्थूल शरीर की ही बात है, सूक्ष्म की नहीं है। पहले तो बाहर की चिंतन करो कि ये शरीर जब छूट जाता है तो सूक्ष्म शरीर का क्या होता है, वो कहाँ जाता है, आवागमन करता है। जब तक हमारे को ज्ञान नहीं हुआ, आना जाना किसका होता है, इसका तो है नहीं, ये तो हमने जला दिया या गाड़ दिया या जल में प्रवाह कर दिया, गया कौन है, जिसके लिए हम बाद में पूजा पाठ करा रहे वो कौन है, शरीर तो हमने अपने हाथ से जलाया है ना, तो कौन गया है, रोते किसके लिए, पूजा पाठ किसके लिए करते हैं, कोई गया समझते हैं हम, गया का मतलब क्या होता है, एक स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान में गया है तभी तो कहेंगे। तो जो बार बड़ा शरीर है हमने अपने हाथ से जलाया है तो गया कौन है, सूक्ष्म शरीर गया है, तो गया कहाँ है, वो शरीरांतर में प्रवेश हुआ है। शरीरांतर में प्रवेश होने का मतलब क्या है, उसकी वृत्ति बदल गई है, जैसे हम अब कहते थे मैं मनुष्य हूँ, तो बाद में क्या, दूसरे शरीर में गया तो मैं जिस शरीर में जाएगा वैसी वृद्धि हो जाती है, मैं गीद हूँ, मैं पशु हूँ, मैं पक्षी हूँ, वृत्ति अंतर हुआ ना, और क्या हुआ, शरीर दूसरे मिलने का मतलब क्या, वृत्ति हमारी बदल गई। पहले जिस शरीर से आसक्ति थी मैं मनुष्य हूँ, अब पशु में चलेगा तो मैं पशु हूँ, क्या हुआ, वृत्ति हमारी बदल गई, भावना हमारी बदल गई। इसका मतलब जो सूक्ष्म शरीर है उसका क्या होता है, तन छूटे मन कहाँ समाई, इस मन को कोई खोज हो भाई, हे भाई इस मन का, इस सूक्ष्म, इस जीवात्मा का चिंतन करो कि इसका क्या होता है शरीर छूटने के बाद, आपको कभी भी कष्ट नहीं होगा, सारी दुनिया सतम समाप्त हो जाए तब भी कष्ट नहीं होगा। मानते हैं कि लौकिक दृष्टि से कष्ट होता है, माना जाता है व्यवहार में कष्ट होता है, लेकिन पारमार्थिक दृष्टि से कष्ट नहीं होगा, थोड़ी देर के लिए आप क्षिप्त हो सकते हैं लेकिन सदा के लिए नहीं होंगे जब चिंतन करेंगे तो। ये शरीर जब छूटता है तो सूक्ष्म शरीर का क्या होता है, भाव आवागमन होता है, शरीर अंतर में प्रवेश होता है उसका, उसकी यात्रा भी चल रही है। जब उसका चिंतन करेंगे कि सूक्ष्म शरीर किसको कहते हैं, तो 17 तत्व का बना हुआ सूक्ष्म शरीर है, उसमें 3 कोश हैं, 5 कोश होते हैं ना, 5 पर्दे होते हैं, खजाना बोलते हैं कोश को, एक तो ये है अन्नमय कोश, जो अन्न के माता पिता ने अन्न खाया उससे हमारा ये शरीर पैदा हुआ, उसके रस से, और अन्न से ही चलता है, अंत में अन्न में मिल जाता है पृथ्वी में, इसको कहते हैं अन्नमय कोश, स्थूल शरीर। ये छूटा तो बाकी बचा सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, तो स्थूल सूक्ष्म शरीर में 3 कोश हैं, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश। अभी तो बताया आपको, प्राण 5 प्राण हैं, मनो जो मन है उसके साथ ज्ञान इंद्रिय हैं, और बुद्धि है उसके साथ ज्ञान इंद्रिय हैं, ये 3 कोशों का बना हुआ हमारा सूक्ष्म शरीर है, उसी का आवागमन होता है। प्राणमय कोश तो हमने जला दिया अपने हाथ से, जहाँ गंगा में प्रवाहित कर दिया, लेकिन सूक्ष्म शरीर को हमने जाना ही नहीं था, हमारी पहचान ही नहीं थी, इसलिए वो हमारे हाथ से निकल गया, वो हमने पकड़ पाए उसको, तो उसको पकड़ना है इस मन को, कोई खोज जो भाई, तन छूटे मन कहाँ समाई, कहाँ जाता है, दूसरे शरीर में चला जाता है, जब तक हमारे को ज्ञान नहीं हुआ, जब ज्ञान हो जाएगा तब वो शरीरांतर में नहीं जाएगा। जब कोई ब्रह्मवेत्ता तत्ववेत्ता शरीर छोड़ता है उसका क्या होता है, उसका शरीर भी जो बाहर वाला, तो हम उसकी क्रिया स्वयं करते हैं, लेकिन उनका जो अंतर वाला शरीर है वो था ही नहीं, तीनों शरीरों की निवृत्ति हो चुकी है उनकी। न तस्य प्राणात्प्रामंती तस्मिन् निविलीयते, श्रुति भगवती कहती है कि न तस्य प्रमाणा प्राणात्प्रामंती, उस ब्रह्मवेत्ता के जो प्राण भाव जो सूक्ष्म शरीर है, न उत्क्रामंती, कहीं नहीं जाता, तो कहाँ गया, भाव था ही नहीं, वो जाता तभी यदि होता तो, कहीं था ही नहीं। सूक्ष्म शरीर तो था, ये नहीं कि नहीं था, शरीर तो था सूक्ष्म, 17 ज्ञान जो सूक्ष्म तत्व थे, लेकिन ब्रह्मवेत्ता उसके साथ असक्त नहीं था, उसकी सृष्टि से वो समाप्त हो गया था, इसलिए न तस्य प्राण उत्क्रामंती, नहीं कहीं जाते। तो फिर कहते भगवान उनके प्राणों का क्या होता है, हमारा प्राण तो सूक्ष्म शरीर हमारा तो जाता है, तो कहते तस्मे नेवलीयते, जहाँ वो होता है वहीं पर सभी तत्व लीन हो जाते हैं, तत्वों में तो कहीं नहीं जाता। हम कहते हैं ना, आज फलाने आदमी का जो शरीर है 5 तत्व में विलीन हो गया, ये बोलते हैं, इसका मतलब हरेक शरीर के जो 5 तत्व हैं वो 5 तत्वों में मिल जाते हैं, लेकिन ब्रह्मवेत्ता का जो 2 और शरीर हैं वो थे ही नहीं, उसको कहीं आना जाना नहीं होता। आत्मघाती की बात अभी आ रही है ना आज, कि जो आत्मघाती होते हैं वो जाते हैं असुरों के लोगों को, तो आत्मघाती कौन है, आत्मघात हमारे को मालूम नहीं ना है, इसलिए नहीं पता चलता, इसलिए आत्महत्या क्या होती है ये नहीं मालूम किसी को, तो कहने का मतलब हुआ कि वो जो सूक्ष्म शरीर है उसकी जो यात्रा है उस यात्रा की समाप्ति बिना ज्ञान के नहीं होती, इस यात्रा की समाप्ति तो हो जाती है शमशान पर जाकर के इस शरीर की, लेकिन सूक्ष्म की नहीं होती है, उसको आप क्रिया से समाप्त नहीं कर सकते। इस शरीर को आप किसी क्रिया से भी समाप्त कर सकते हैं, क्योंकि नाम रूप आपके सामने है ना, स्थूल शरीर, इसको आप गोली से भी समाप्त कर सकते हैं, किसी का शरीर आप समाप्त कर सकते हैं कि नहीं क्रिया से, लेकिन जो सूक्ष्म शरीर है उसके ऊपर आपका कोई अधिकार नहीं है समाप्त करने का, भले आपका हो भले किसी का हो। आपका भी समाप्त तभी कर सकते हैं आप जब आपको ज्ञान होगा, रहते ज्ञानान मुक्ति, उस सूक्ष्म शरीर को आप क्रिया से, डंडे से, किसी हथियार से नहीं मार सकते, वो ज्ञान से ही छूटता है। जब वो हमारा सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर छूटेगा तब हमारी यात्रा की समाप्ति होनी है, तब हम अपने स्वरूप में जाकर के स्थित होंगे। वो कैसा स्वरूप है, स्वरूप है सुखमनी साहिब में बताते हैं महाराज जी को, कैसा सुख है जो स्वरूप का है, अविनाशी सुख, कैसा सुख है वो, अविनाशी सुख है। अविनाशी तो आप समझते ही हैं, जिस सुख का कभी विनाश नहीं होता, जो सचित आनंद स्वरूप है, ब्रह्म अभिन्न जो हमारा प्रत्यक्ष आत्मा है, वो अविनाशी सुख है। लेकिन वो कहाँ है, उसी पंक्ति के अंदर है कि वो सुख है कहाँ, वो तो केवल सुख के लिए बताया कि वो आनंद, वो सुख कैसा है, अविनाशी है, लेकिन वो सुख जो है वो अवस्था कैसी है, कहाँ है, आपन आसन आगे वाली पंक्ति में है ना। आपन आसन का अर्थ क्या हुआ, अपने स्वरूप में स्थिति, आसन मतलब टिकना, कहाँ टिकना, अपने में, अपने स्वरूप में स्थित हो जाना ही अविनाशी सुख है। तो इसका मतलब सुख की दौड़ में हम हैं कि नहीं, सब लोग सुख हमारे को चाहिए, सुख भी ऐसा चाहिए अविनाशी हो, कभी कोई उसको छीन ना पाए, ऐसा सुख हम चाहते हैं कि नहीं, हम नहीं सभी चाहते हैं, प्राणी मात्र की जो इच्छा है कि मेरे को ऐसा सुख मिले अविनाशी, उसको कोई छीन ना पाए। और वेदांत की यही मुक्ति है, यही मुक्ति का स्वरूप है परमानंद की प्राप्ति और दुख की अत्यंत निवृत्ति, यही तो है। ये दोनों बात हमारे को समझ जाएंगे तो फिर हम मुक्त हैं, बद्ध है ही नहीं। दुख हमारे को हो कहाँ से रहा है, बात तो यही है, और दुख होता कहाँ है ये बात है, दुख किससे होता है ये बात है। जब ये बात समझ जाएंगे तो फिर अपने आप दोनों चीज़ों की प्राप्ति हो जाएगी, यही मुक्ति है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि वो जो शरीर सूक्ष्म शरीर है उसकी यात्रा की समाप्ति नहीं होती, बात जहाँ चल रही है उनको हम जानेंगे, उसका चिंतन करेंगे उस शरीर का, तब उससे अलग होंगे। तो ये जो अलंकार मैंने आपको बतलाया, ये हमारी जीवन यात्रा की सफलता के लिए बहुत बड़ा साधन है। वेद भगवान बता रहे हैं हमारे को, चार्ट बता रहे हैं कि आपकी यात्रा में कौन कौन से लोग हैं, उनसे सावधान रहो नहीं तो धोखा हो जाएगा आपके साथ। तो शरीर हमारा रथ है, बुद्धि सारथी है, मन रूपी लगाम है, इंद्रिय रूपी घोड़े हैं, विषय रूपी मार्ग है। तो केवल आपको सारथी को कंट्रोल करो, बुद्धि को, बुद्धि के साक्षी बन जाओ, तो सारथी अपने आप लगाम को कंट्रोल करेगा, तो लगाम घोड़े को कंट्रोल करेगी, तो फिर जहाँ आपका मार्ग होगा वहाँ को लेके जाएगी, नहीं तो आपको कहीं भी जा करके गिरा देगा रथ। और इसलिए ये साक्षी है कि इनके सबके ऊपर कंट्रोल करना, इनका ध्यान रखना, इनका मतलब साइड में होकर के इनको देखते रहना, इनके साथ लिप्त नहीं होना, आबद्ध नहीं होना, इनके पीछे नहीं लगना, इनके कर्म को देखना ही साक्षीपना है। ये जो कुछ कर रहे हैं ये हमारे को नहीं जान सकते, हम इनको जानते हैं। आप यदि अपने आप को जानना भी कभी चाहते हैं ना, कभी इच्छा होती भी है कि मैं कौन हूँ, तो किनके द्वारा हम चिंतन करते हैं, बुद्धि के द्वारा, मन के द्वारा, उल्टा हो गया कि नहीं। जो हमारे कंट्रोल में हैं हम उनको जानते हैं, हम उनका अधिष्ठान है, उनका आश्रय है, उनके द्वारा अपने आप को कैसे जानोगे। मिट्टी का घड़े का कौन आश्रय है, मिट्टी घड़ा थोड़ी मिट्टी को जान सकता है, हम तो आश्रय हैं उनके। और बुद्धि के द्वारा, जैसे मानो हम कोई कर्म करते हैं तो शरीर के द्वारा, इस शरीर के, इसलिए यदि हम कहेंगे कर्म करने से मुक्त होता है, मोटी जब हम बाहर का स्थूल विचार करते हैं तो कह देते हैं वहां पर कि सेवा करने से आपको, सेवा करेंगे तो आपको अवश्य मुक्ति मिलेगी, तो इसका मतलब ये थोड़ी है। कर्म तो ऐसे शरीर से कर रहे हैं, जड़ है, लेकिन उसको सहायक है। जब कर्म करेंगे ना निष्काम हो करके तो हमारे अंतःकरण की शुद्धि होगी, उपासना करेंगे तो चंचलता की समाप्ति होगी। जब तक मन चलायमान है, उसमें मैल है, तब तक हमारे को रास्ता नहीं मिलता, उसमें से हमारा जो अक्ष है, जो प्रतिबिंब है, उसका अनुभव नहीं होता, साक्षीपने की अनुभूति नहीं होती। तो इसलिए चिंतन करना इस प्रकार से है कि ना मैं मन हूँ, ना मैं बुद्धि हूँ, केवल शब्दों से नहीं बोलना, जैसे हमने बताया, ऐसे चिंतन करना है, शब्द नहीं केवल बोलना कि मैं देह नहीं हूँ। देह नहीं हूँ यदि ऐसा है तो देह क्या है, पहले देह के बारे जानेंगे, देह के धर्मों के बारे जानेंगे, तो फिर पता चलेगा कि ये तो धर्म वाकई मेरे में कोई भी नहीं है, इसके छूटने के बाद भी मैं हूँ, इसके पहले भी मैं था, नाम और रूप में शक्ति नहीं कर रहा, ये हमारा विचार चिंतन चल रहा है। जो आगे वाला श्लोक आ रहा है, जो मंत्र आ रहा है, तृतीय मंत्र, उसमें कहते हैं कि असूर्या नाम ते लोका अंधेन तमसावृता त्रास्ते प्रत्या विगच्छन्ति ये चात्महनो जनाः। ये है तीसरा मंत्र कि जो लोग आत्मघाती हैं उनका क्या होता है, असूर्या नाम ते लोका प्रत्यावगच्छन्ति, मरने के बाद जाते हैं वो, प्रत्य मतलब मरना, मरने के शरीर छूटने के बाद वो कहाँ जाते हैं, असूर्या नाम ते लोका, उन लोगों में जाते हैं जो लोग अंधकार से आच्छादित हैं, असुरों के लोग, असुरों राक्षसों के लोग, उसमें जाते हैं वो लोग, कौन, आत्मघाती। ये इस श्लोक का जो भाव मात्र है कि जो आत्मघाती लोग होते हैं उनकी गति क्या होती है मरने के बाद, मरने मतलब जन शरीर छूटने के बाद क्या गति होती है, कि वो उन लोगों में जाते हैं जो लोग अंधकार से आच्छादित हैं, ढके हुए हैं, ये सब इसका भाव है। लेकिन इतने मात्र से तो काम चलने वाला नहीं है, इसकी जो बात बीच में कही गई है, अंधेन तमसावृताः असूर्य नाम और आत्मघाती, ये सब शब्द जो है इनके ऊपर चिंतन करना पड़ेगा, जो तो शब्द है ना, इनका अर्थ चिंतन करेंगे तब पता चलेगा। तो सबसे जो आवश्यक बात है इसमें मेन, कि आत्मघाती लोगों की ये गति होती है। तो आत्मघाती कौन लोग हैं, यदि इतना पता चलेगा तब पता चल जाएगा वो कहाँ जाते हैं, वो तो बाद की बात है। हम ही कहते हैं ना, हमारे को चिंतन तो रहता है ना, हम पूजा पाठ करवाते हैं किसी का छरी छूटने के बाद, तो मन में कुछ होता है ना भी कहीं गया है, कहाँ गया है। कहते हैं ना उनको भगवान सदगति दो, भाव अच्छे लोग में उसको लेके जाओ, तो इसका मतलब कहीं ना किसी लोग में वो जाता है, तभी हम कहते हैं चिंतन करते हैं। हमारे को संशय होता है ना कि कहीं बुरे लोग में ना चला जाए, इसलिए हम उसकी प्रार्थना करते हैं ना कि कोई सदगति भाव अच्छी जगह अथवा उसकी मुक्ति करो, तो उसको लोग पर लोग का जो यात्रा है उससे उसको चढ़ाओ, इसका मतलब कहीं वो जाते हैं। तो मानो ये यहाँ पर सबकी बात नहीं बतलाते, आत्मघाती की बात बतला रहे हैं कि आत्मघाती लोगों की क्या गति होती है। तो आत्मघाती का अर्थ क्या है, आत्मा का हनन करने वाला, आत्मान जो आत्मा को नष्ट करने वाला है उसको बोलते हैं आत्मघाती। तो आप तो सब वेदांत का चिंतन करने वाले हैं, आत्मा के बारे आपने सुन रखा है, कि आत्मा कैसा है, सच्चिदानंद स्वरूप है, अपरिच्छिन्न है, शुद्ध है, नित्य है, मुक्त है, ये आत्मा के बारे आपने सुन रखा है। तो ये भी आपने सुन रखा है कि आत्मा कैसा है, नैनम छिंदंती शास्त्राणी नैनम दहति पावकः, सुना है ना आपने, नैनम छिंदंती शास्त्राणी शस्त्राणी, आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, नैनम दहति पावकः, आत्मा को अग्नि नहीं जला सकती, उसको हवा नहीं सुखा सकती, पानी उसको गीला नहीं कर सकता, अच्छे देव या मदाही हो या कितने श्लोक हैं गीता के आत्मा के बारे में। और ये भी आपने सुन रखा है कि वो कहीं न जायते न मृियते वा कदाचन न भूत्वा भविता वा न भूयः अजह नित्याशाश्वतो यम प्राण न हन्ति हन्यमाने शरीरे, ये आत्मा के बारे सुनना है ना हमने कि ना वो कहीं जाता है ना आता है, नित्य है, शुद्ध है, मुक्त है, शाश्वत है, न हन्ने हन्यमाने शरीरे, ये भी सुन रखा हमने कि शरीर के हनन होने पर उसका हनन नहीं होता, सुना है कि नहीं है? तो फिर भी हम आत्मघात समझते नहीं कि आत्मघात किसको कहते हैं, इतना सुनने के बावजूद भी कोई आत्महत्या करता है तो क्यों, जब उसको पता चल गया कि आत्महत्या किसको बोलते हैं तो फिर आत्महत्या करनी चाहिए ना उसको, समझ गया जाए, आत्मा की हत्या हो ही नहीं सकती जब गीता कह रही है भी नहीं होती, ना शास्त्र ना शस्त्र से होती है, ना अग्नि से जलती है आत्मा, ना हवा उसको सुखाती है, ना पानी गीला करता है, ना शरीर के मरने के बाद, शरीर के हनन होने के बाद उसका हनन होता है, तो फिर आत्मघाती कौन हुआ, स्पष्ट हो गया कि नहीं बात, शरीर जिसका शरीर गया ना उसने शरीर की हत्या की है, मानो किसी ने कुछ खाया, जहर खाया या फांसी लगाई, तो क्या हुआ, आत्मा का हनन हुआ, नहीं ना हुआ, हमारे को कह रहे हैं भगवान कृष्ण भी नहीं हुआ, ना जायते मृियते वा कदाचन, कभी भी वो पैदा ही नहीं हुआ तो मरेगा कहां से, मोर लगाइए ना जायते मृियते कदाचन नायम भूत्वा भवितावा न भूया, पहले भी अभी भी बाद में भी कभी भी, कहते ना जन्मा था ना कभी मरता है, अजहा अजन्मा है, नित्यः शाश्वतः सनातन है, पुरातन है, न हन्यते, कभी उसकी मतलब समाप्ति नहीं होती, हन्य माने शरीरे, शरीर के नष्ट होने से उसकी वो नष्ट नहीं होता, इतना हमारे को यकीन दिवाया भगवान ने, खोल के बताया, नैनम छिंदंती शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, ये भी बताया, आगे भी बहुत बतलाया, तो फिर मतलब हुआ कि आत्मघाती कौन है, ये बात यहाँ पर आ रही है, आत्मघाती लोग जाते हैं, ऐसे लोगों को प्राप्त होते हैं, तो इसका मतलब है कि चिंतन करेंगे तब बात स्पष्ट होगी कि आत्मघाती कौन है, आत्मघाती किसको बोलते हैं, मानो कोई वस्तु है आपके सामने, वस्त्र है आपके सामने, तो वस्त्र को आप उपयोग करते हैं, ये कपड़ा आपने पहना है, इसके कपड़े के बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि कपड़ा क्या चीज है, इसका उपयोग कहाँ होता है, ये कपड़ा आपके पहनने के लायक है, ये आपको मालूम है तो आपने पहन लिया, ये वस्तु आपके खाने के योग्य है तो आपने खा ली, उसका सदुपयोग हुआ कि नहीं हुआ, जिसके लिए थी वो आपने काम किया, यदि उसी वस्तु का दुरुपयोग हो जाए तो क्या होगा, आत्मा का मतलब उसका स्वरूप, आत्मा का अर्थ क्या है, किसी वस्तु का स्वरूप, जो उसका स्वरूप था उसके बारे आपको मालूम है, उस स्वरूप से उस वस्तु को उस स्वरूप से उस उपयोग से वंचित कर देना ही आत्मघात है, समझेगे ना बात, जो वस्तु आपके सामने है उसका जैसा स्वरूप है और जिस उपयोग में आनी चाहिए उस स्वरूप से उस उपयोग से उसको आपने दुरुपयोग कर दिया तो यही उसका घात है, सोने को आपने लोहे के भाव बेच दिए तो क्या हुआ, सोने का घात हुआ कि नहीं, सोने के स्वरूप में आपको मालूम है, सोने का उपयोग आपको मालूम है, तो फिर भी आपने क्या किया, लोहे के भाव बेच दिया उसको, तो उसका स्वरूप नष्ट हुआ कि नहीं, उसका उपयोग नष्ट हुआ कि नहीं, यही घात है, किसी वस्तु के स्वरूप से उपयोग से उसको वंचित कर देना ही घात है। तो जो हमारा शरीर है मानो स्थूल शरीर, इसको किसी ने इसके महत्व को समझा नहीं, जैसे सोने के महत्व को नहीं समझा तो लोहे का भाव भेज दिया कि नहीं। तो शरीर का महत्व किसी ने समझा नहीं कि ये शरीर जो जन्म हमारे को मिला है, लब्ध्वा कथंचन नर जन्म दुर्लभम, ये शंकराचार्य भगवान कहते हैं, लब्ध्वा कथंचन नर जन्म दुर्लभम तत्रापि पुरुषम, उस शरीर में भी जा करके श्रुति पारदर्शनम तत्रापि पुरुषत्वम, इस शरीर को मानो कभी बहुत ज़्यादा हमारे पुण्य थे तो प्राप्त हुआ, तत्रापि पुरुषत्वम, फिर ये जन्म ही दुर्लभ है कहते हैं भगवान शंकराचार्य, ये कभी मिल गया भाग्य से, बड़े भाग मनुष्य तन पा मिल गया, कोई भगवान की कृपा हो गई तो उसके बाद भी कैसा तत्रापि पुरुषत्वम, फिर उसमें हमारे को पुरुषत्व प्राप्त हुआ। पुरुषत्व का मतलब जिसके द्वारा श्रुति पारदर्शनम, जिसके द्वारा हम श्रुति का पार पारदर्शिता भाव, श्रुति का जो रहस्य है वो जान सकते हैं, ऐसा हमारे को जन्म प्राप्त हुआ कथनचित कभी भगवान की कृपा से। तो कहते हैं ऐसा जो जन्म है उसको प्राप्त करके जह स्वात्मुक्त ना यतेत मूढ़ थी, भगवत पाद शंकराचार्य का यह वचन है कि न स्वमुक्त या स्वमुक्त न यतेत, जो इस अपनी आत्ममुक्ति के लिए यत्न नहीं करता मूढ़ थी मूर्ख बुद्धि पुरुष सह आत्महया, वो कहते आत्मघाती है, सत्यात्मया वो कहते सत्यात्मा, वो है आत्म का घाती, मिनी हंत्या सत्ग्रहात, वो कहते असत को ग्रहण करने से अपने आप को नष्ट कर रहा है। ये शंकराचार्य महाराज कहते हैं कि ऐसा जो दुर्लभ हमारे को जन्म प्राप्त हुआ है वो भी कैसा, उसमें पुरुषत्व है भाव, श्रुति को रहस्य जानने की समर्थ है, उसके द्वारा हम मुक्ति को प्राप्त हो सकते हैं, उस जन्म को भी प्राप्त करके जिसने अपनी मुक्ति के लिए यत्न नहीं किया, सह्यात्मा वो ही आत्मघाती है। क्यों? क्योंकि असत को ग्रहण करने से अपने आप को नष्ट कर रहा है, ये आत्मघाती का लक्षण बताया शंकराचार्य महाराज ने। भाव जिसने इस ऐसे अमूल्य शरीर को प्राप्त करके जिसमें हम यत्न करके अपने स्वरूप में प्राप्त हो सकते हैं, फिर भी यत्न नहीं किया अपनी आत्ममुक्ति के लिए, वही क्या है, मूढ़ थी पुरुष आत्मघाती है। भाव इस आत्मा का हनन कर रहा है, आत्मा की मुक्ति के लिए चिंतन ना करना, आत्मा के स्वरूप को ना समझना, उसका सदुपयोग ना करना ही आत्मा का घात है। बाकी विचार कल को करेंगे। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री स्वामी जी महाराज की जय। सतगुरुदेव महाराज की जय। हर हर।